चक्रवर्ती का प्राचीन इतिहास जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हुई और उन्होंने भेद विज्ञान के द्वारा छह खंड के राज्य को भी तुच्छ समझकर उसका परित्याग किया। यहां तक कि भगवान ऋषभदेव की इक्ष्वाक वंश की बात बताई है महापुराण के अंतर्गत कि 14 लाख राजाओं तक अक्षुण्ण परंपरा चली जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया और दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। पुनः उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे 14 लाख राजाओं तक यह अक्षुण्ण परंपरा चली है। यह अयोध्या का प्राचीन इतिहास है। और ऋषि वंश परंपरा में भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र, प्रथम पुत्र, इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भरत जी रहे हैं, जिन्होंने अपने पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य सौंप करके और जनेसरी दीक्षा धारण की थी। भरत का जीवन बड़ा रोमांचक और भक्ति के रस से ओतप्रोत रहा। वे अपने राज सिंहासन पर भी बैठते थे, प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा करना, राजसभा में बैठ करके धर्म चर्चा करना, महलों में भी जाकर अपनी रानियों के संग मनोरंजन आदि करते हुए भी सबको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रसाद की शिक्षाएं दिया करते थे। संख्यातों पुत्र पुत्रियों के बीच में बैठकर सुमेरु के समान चमकते हुए महाराज भरत बड़े सुशोभित होते थे। और इधर क्या होता है, अब मैं आपको एक दूसरे प्रसंग की ओर ले चलती हूँ। अयोध्या से हम सीधे बनारस चलेंगे, अर्थात उसी युग की बात है जब महाराज भरत अयोध्या में राज कर रहे थे और जब उन्होंने 52 देश के राजाओं को नियुक्त किया था। उस समय राजा अकंपन को बनारस का राज, वाराणसी का राज्य सौंपा था। वहां पर भी सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे, चमर ढूंढ रहे थे उनके ऊपर और सभा में चारों ओर का वातावरण बिल्कुल सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा के समान प्रतीत हो रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि उनकी कन्या जिसका नाम था सुलोचना, ध्यान से सुनना, एक प्राचीन घटना है। और उस समय जो प्रथम घटना घटी थी उसके बारे में जानना है। सुलोचना नाम की कन्या अपने पिता के समीप आई और हाथ में पूजा की थाली केस से साक्षात मस्तक पर चढ़वाने के लिए आई। आज भी आशिका देने की परंपरा है। शेषाक्षत तो उसको कहा जाता है जो पूजा में से शेष द्रव्य बचता है, अक्षत बचते हैं वे भी पूज्य हो जाते हैं। जैसे चौके में महाराज माते का आहार होता है तो बचा हुआ अन्न प्रसाद की तरह से हो जाता है। इसी प्रकार से जिन द्रव्यों से पूजा करते हैं उसमें थाली में थोड़े पीले चावल, सफेद चावल ये बच जाते हैं जो शेषाक्षत कहलाते हैं और उनको मस्तक पर चढ़ाते हैं, उच्च मान करते। अब ये क्या है कि आजकल स्थापना के होने को लेकर के लोग आशिका लगाते हैं, मस्तक पर चढ़ाते हैं, ये परंपरा कहाँ से आई पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो शेषाक्षत को मस्तक पर लगाने की परंपरा बताई गई है। तो युग की आदि में देखो, सुलोचना नाम की कन्या ने कोई व्रत किया, उपवास किए और खूब बड़ी पूजा करके और शेषाक्षत लेकर के अपने पिता के सम्मुख पहुंची। तो महाराज अकंपन ने आसन से उठकर हाथ जोड़कर उसके द्वारा दिए गए अक्षत को लेकर स्वयं अपने मस्तक पर रख लिया। देखो कितनी श्रद्धा होती थी। और फिर अपनी पुत्री की ओर देखा, देखते हैं मेरी सुंदर पुत्री उपवास से इसका शरीर बड़ा कमजोर हो गया, क्षीण हो गई है। ये कहते हैं पुत्री अब तू महल में जा और जल्दी से जलपान लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ कर, क्योंकि तू उपवास से अतिशय खिन्न हो गई है, कमजोर हो गई है। पुत्री सुलोचना पिता को प्रणाम करके और आ जाती है महल में, खाना पीना करती है और उसकी विशुद्धि भावों की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वर्णन आया है सम्यक दर्शन की विशुद्धि के विषय में। उस सुलोचना के लिए विशाल जिन मंदिर में बहुत सारी रत्न प्रतिमाएं उसने विराजमान कराई, आज तो उसमें कोई कमी तो थी नहीं। अच्छी अच्छी बातें कहती थी वो, अच्छा दान देने की बात रखती थी तो पिता प्रसन्न होते थे और राजा अकंपन अपना कोष खोल देते थे, पुत्री जो कुछ करना है तो कर ले। और तरह तरह के पूजा के सोने के उपकरण बनाए, खूब जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई, हर दिन उनकी पूजा किया करती थी। फाल्गुन के अष्टानिका पर में विधिवत पूजा विधान करके अनुष्ठान करके उपवास करके और अब वो शेषाक्षत देने आई थी तो पिता की नजर पड़ती है कि अब मेरी पुत्री पूर्ण यौवन हो गई है, यौवन अवस्था में युवती हो गई है, यौवन अवस्था में आ गई है। तब उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि हमारी वंश परंपरा अक्षुण बनी रहे और गृहस्थ धर्म की परंपरा निरंतर आगे चलती रहे, इसके लिए हमें अब इस पुत्री का विवाह करना चाहिए। तब मंत्री लोग कहते हैं कि राजन ये बात आपने समय से अच्छी बात सोची है। एक मंत्री ने कहा कि महाराज योग्य वय में उम्र में आ जाने पर विद्या बुद्धि आदि से समन्वित होने पर अपनी पुत्री का विवाह करना बहुत अच्छी बात है। मेरी समझ में आता है कि भरत चक्रवर्ती जो अयोध्या के राजा हैं उनके पुत्र हैं अर्क कीर्ति, उनके साथ अगर आप अपनी कन्या देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और आप भी महान चक्रवर्ती के संधि बन जाएंगे, आपकी भी विशेषता आपकी कीर्ति भी बढ़ जाएगी। फिर दूसरे सिद्धार्थ मंत्री ने कहा कि व्यवहार में कुशल लोग ये कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग के या छोटे लोग रहते हैं उन्हें अपनी बराबरी में ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या हो और चाहे पुत्र हो। आप राजा हैं और छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती हैं तो मुझे ये बात नहीं जचती है। यानी कुल मिलाकर के विचार विमर्श करके फिर एक सुमति नाम के मंत्री कहने लग गए कि मेरी समझ में आ रहा है कि प्राचीन पुराण पुरुषों के अनुसार अपने को स्वयंवर विधि रखनी चाहिए, यानी स्वयंवर मंडप बना करके राजकुमारों को आमंत्रित करें जो राजा अपने राजकुमारों को भेजेंगे, समझो उनकी स्वीकृति है और वे आकर के यहाँ बैठेंगे, सुलोचना जिनके गले में चाहेगी वरमाला डालेगी। ये बात अकंपन राजा को अच्छी लगी। देखो ये युग की आदि का प्रथम स्वयंवर था। विवाह तो आदिनाथ भगवान के समय और उनके पिता के समय से विवाह की परंपरा तो चल गई, लेकिन स्वयंवर विधि से विवाह की ये प्रथम परंपरा थी। तो कहते हैं कि आपने अपने मन से किसी को कन्या दे दी तो कुछ लोग विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि आपकी कन्या बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सारे लोगों की तरफ से ऑफर आया हुआ है, तो हम स्वयंवर मंडप बनाएंगे और उसमें राजकुमारी जिसको भी चाहेगी उसका वरण करेगी। महाराज को ये बात जच गई। मंत्रियों को विदा करके वे राजमहल में पहुंचे। अपनी महारानी सुप्रभा, पुत्र हेमांगद और वृद्ध पुरुषों से विचार विमर्श करके स्वयंवर के लिए उन्होंने निर्णय किया। सर्वत्र देशों में राजाओं के पास दूतों को भेज करके आमंत्रण पत्रिका भेजी और दिन निश्चित किया कि इस दिन स्वयंवर मंडप सजाया जाएगा। आप सब लोग आइए और मेरी राजकुमारी जिसको भी वरण करे वह राजकुमार उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा लगा सबको कि ये कौन सी विधि आ गई, स्वयंवर की विधि। बहुत दूर दूर से राजा लोग आने के लिए विचार बनाने लग गए अपने पुत्रों को लेकर के। तो उसी बीच में एक देव आकर के कहता है, महाराज मैं पूर्व में आपका भाई था। किसे कहता है? अकंपन राजा से। और इस समय सौधर्म स्वर्ग से मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम है विचित्रांगद। मैं इस पुण्यवती सुलोचना के स्वयंवर को देखने आया हूँ और मैं स्वयं अपने दिव्य वैभव से इसका स्वयंवर मंडप बनाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरी भतीजी हो गई। मैं इसका विवाह बहुत अच्छे से देखना चाहता हूँ। महाराज के आज्ञा अनुसार राजमहल से उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ा सर्वतोभद्र नाम का राजभवन है कि महाराज जब स्वयंवर हम करेंगे तो इस सर्वतोभद्र नाम के राजभवन में आप रहेंगे और उसके सामने बहुत बड़ा स्वयंवर भवन बनाया। चारों ओर से गोपुर द्वार बने हैं, खूब अच्छे अच्छे गेट बने हैं, खूब उसको सजाया गया है और यथा समय राजकुमार सब आते हैं, उनका खूब आतिथ्य सत्कार होता है। सुलोचना को समझाया जाता है कि पुत्री राज पुरोहित तुझे एक एक राजकुमार का परिचय देंगे, ये कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं, किसके इनके अंदर क्या क्या गुण हैं। तब उसके बाद जिसकी इच्छा हो तो तू उसको वरण कर लेना। रत्नों की माला उसके हाथ में दे दी गई। अपने अपनी सखियों के साथ में वह स्वयंवर मंडप में पहुंचती है। दिल के अंदर बड़ी भारी घबराहट धड़कन है कि कौन राजकुमार मेरे योग्य होगा, मैं किसका वरण करूंगी उसे खुद ही नहीं पता होता है। अब इतने में जैसे ही राजकुमार जन बैठ जाते हैं, राजा रानी अपने सिंहासन पर बैठते हैं, सुलोचना अपनी सखियों के साथ राजसभा में स्वयंवर मंडप में आती है। रथ में बैठ करके सोने के रथ में बैठ करके आती है। रत्न माला उसके हाथ में दे दी जाती है और पुरोहित उसको बताना शुरू करते हैं। कन्या भगवान की पूजा आदि करके और स्वयंवर मंडप में आकर के राज पुरोहित के द्वारा जो कुछ बताया गया वो सुनिए। क्या कहते हैं पुरोहित जी? देखो ये भरत सम्राट के सबसे बड़े पुत्र अर्क कीर्ति हैं, युवराज अर्क कीर्ति हैं। कन्या उनकी बात सुन करके समझ गई कि ये चक्रवर्ती के पुत्र हैं। आगे चल करके दो चार राजाओं को और बढ़ा करके फिर आगे चल करके पुरोहित जी बताते हैं कि पुत्री ये हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार और उनकी विशेषता भी बताई कि जब महाराज भरत चक्रवर्ती बनने के लिए विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे तो ये जय कुमार उनके प्रधान सेनापति बने थे और इन्होंने अनेक स्थान के राजाओं को जीतकर राजा भरत के गौरव को वृद्धिंगत किया था। जैसे ही सुलोचना उनके निकट पहुंचती है तो पूर्व जन्म का संबंध होगा, कहते जोड़ी तो बन के आती है। जोड़ी बन के आती है मतलब कुछ पूर्व जन्म के संबंध होते हैं और कुछ जो संयोग होता है। तो राजकुमार राजकुमारी ने तुरंत जय कुमार नाम के राजकुमार के गले में वह रत्नमाला वरमाला डाल देती है और रथ रुक जाता है। जैसे कान होने लग जाती है, देवता भी आकर के कुछ सृष्टि करने लग जाते हैं, क्योंकि वह इस मध्य लोक की इस युग की प्रथम स्वयंवर सभा थी और उसको देखने के लिए भी बहुत सारे देवता भी आ गए थे, राजा भी आ गए थे, राजकुमार भी आ गए थे। तो जय कुमार के गले में उसने वरमाला डाल दी। अब क्या होता है, वरमाला तो डल गई, अन्य राजकुमार जिनके पास से निकल निकल करके गई थी वो बेचारे शर्म के मारे नीचे सिर करके बैठे हुए थे, इसने मुझे नहीं पसंद किया, मैं तो मेरे अंदर पता नहीं क्या कमी है। और जैसे जय कुमार को पसंद किया तो अंक कीर्ति के एक मित्र ने उन्हें भड़का दिया, अरे देखो आपका अपमान करने के लिए राजा कंपन ने बुलाया है, पहले से ही समझा दिया गया होगा, इन्हें अपनी पुत्री को समझा दिया होगा, तो यहाँ आपका अपमान हो रहा है, जिन भरत की कीर्ति छह खंड में फैल रही है उनके पुत्र की कीर्ति आज यहाँ अपकीर्ति के रूप में हुई है, राजन हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम युद्ध करेंगे और इस जय कुमार सेनापति को मौत के घाट उतार देंगे। तो वहीं पर युद्ध छिड़ जाता है। वहां जा करके जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी वहीं युद्ध छिड़ जाता है। बहुत समझाया दूसरे मंत्री ने, लेकिन जय कुमार के साथ अर्क कीर्ति की सेना जुड़ जाती है और खूब युद्ध चलने लग जाता है। आप श्रवण करते रहें आगे क्या होता है, किस प्रकार से कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन युद्ध के इस प्रथम स्वयंवर मंडप की बात सुनकर के आप सुलोचना राजकुमारी की कथा को आगे श्रवण करते रहिए।